नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विनेश फोगाट को ओवरवेट होने के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए फोगाट को चैंपियनों में चैंपियन कहा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। बिहार के दो रिक्त सीटों पर 3 सितंबर को होगा मतदान। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट को ओवरवेट होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनका वजन निर्धारित 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक पाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक वक्तव्य में कहा कि रात में टीम द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद आज सुबह फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक था। इसके बाद उन्हें 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती की फाइनल स्पर्धा से बाहर होना पड़ा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में विनेश फोगाट को सांत्वना देते हुए कहा कि यह दुखद है और उनके पास अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलवान फोगाट चैंपियनों में चैंपियन है। वे भारत की गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से भी बात की और मामले की जानकारी मांगी। उन्होंने विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारत के पास मौजूद विकल्पों का पता लगाने को कहा। प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से यह भी कहा कि अगर विनेश को मदद मिलती है तो उनकी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराएं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने के लिए विश्व कुश्ती संघ में विरोध दर्ज करा दिया है। श्री मांडविया ने आज लोकसभा में कहा कि केंद्र विनेश को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष से इस बारे में बातचीत की है। श्री मांडविया ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ से इस बारे में सभी संभावनाएं तलाशने को कहा गया है।
विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया।
चुनाव आयोग ने राज्यसभा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार के 2 समेत 9 राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव होगा। बिहार से राजद की मीसा भारती और भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए 14 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन का काम भी शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 21 अगस्त तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित है। आवश्यकता होने पर 3 सितंबर को मतदान होगा। सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित पुनर्परीक्षा के पहले दिन आज फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। खगड़िया में पुलिस ने छापेमारी कर सॉल्वर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से परीक्षा की फर्जी उत्तर कुंजी बरामद की गई है। मौके से 70 अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया। बाद में इन सभी का सत्यापन कर परीक्षा में शामिल होने के लिए छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ बक्सर के टुमरौ से भी सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इधर कैमूर के एक छात्रावास से पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 250 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने सेटिंग करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया। मौके से एक अभ्यर्थी की भी गिरफ्तारी हुई है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203 गीगावाट तक पहुंच गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने ये जानकारी दी।
2014 से मोदी जी के नेतृत्व के बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में 165% वृद्धि हुआ है। फ्रॉम 76.38 गीगावाट इन 2014 टुडे इट इज 203.1 गीगावाट हुआ है। हमने अभी जैसे मैंने बताया सोलर में हम 10 साल में 2014 में ओनली 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी था, आज के दिन में 85.47 सोलर एनर्जी कैपेसिटी है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,48,00,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के चौथे चरण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, परिधान, कृषि और लॉजिस्टिक युवाओं के सबसे पसंदीदा क्षेत्र हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे ऐप सैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में सबसे अधिक 163.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं औरंगाबाद के कुटुम्बा में 151.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा या रुक रुक कर वर्षा होने का पूर्वानुमान है। उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य के भागों पर गरज के साथ एक दो जगहों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है।
इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में नवादा जिले में 6 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रित को 4,00,000 रूपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर बह रही है। सुपौल के भीमनगर कोसी बराज पर भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नेपाल में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बरा से आज शाम 5 बजे तक 2,19,085 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया है। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से कोसी नदी में 1,72,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यहां जलस्तर घटते क्रम में रिकॉर्ड किया गया है। जलस्तर के दबाव को देखते हुए कोसी बराज के 56 में से 24 फाटक खोले गए हैं। इधर कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के अंदर रह रहे लोगों को एक बार फिर से बाढ़ और कटाव की चिंता सताने लगी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
इधर बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज, रून्नीसैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान को पार कर गया है। शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है।
शिवहर जिले में लाल बकिया और बागमती नदी एक बार फिर उफान पर है। जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही बाढ़ का पानी धीरे धीरे दोनों तटबंध के बीच फैलने लगा है। तटबंध के किनारे होकर बाढ़ के पानी का बहाव होने लगा है। बागमती नदी में उफान आने के साथ ही तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। वही बिलवा घाट से लेकर टुकड़ा घाट तक दोनों बागमती तटबंध के अंदर नदी के किनारे कटाव हो रहा है। पिपरारी, रतनपुर, उपनी और मझौरा गांव के सीमा क्षेत्र में नदी का कटाव काफी तेजी से हो रहा है। कटाव से धान की फसल के अलावा केला, बांस, शीशम सहित अन्य पेड़ नष्ट हो रहे हैं। बागमती विभाग द्वारा तटबंध की सुरक्षा के लिए निरोधात्मक कार्य कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीवर से हरिकांत सिंह।
इधर गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से मात्र 25 सेंटीमीटर, हाथीदह में 38 सेंटीमीटर और दीघा घाट में 91 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण शेखपुरा जिले से होकर गुजरने वाली हरोहर और टाटी नदी उफान पर है। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
जिले के घाटकुसुमा प्रखंड क्षेत्र में हरोहर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अब इसकी सहायक टाटी नदी भी उफान पर है। टाटी नदी का पानी प्रखंड क्षेत्र के डीह कुसुम्भा गांव के नईका टोला में फैल गया है। पानी के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने की आशंका जताई जा रही है। इधर जिला प्रशासन ने जल स्तर में वृद्धि को देखते हुए कई एहतियाती उपाय किए हैं। लोगों से भयभीत नहीं होने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों के लिए सुरक्षित शरण स्थली के साथ साथ नाव, लाइफ जैकेट और भोजन की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
इधर गंडक नदी गोपालगंज के टुमड़िया घाट में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, कमला बलान मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में तथा परमान नदी अररिया में चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पर्यटन विभाग ने मिथिला के लोक कवि विद्यापति की जन्मस्थली मधुबनी जिले के बिस्फी गांव के विकास के लिए 19,90,00,000 रूपये आवंटित किया है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में विद्यापति से जुड़े अन्य स्थलों का भी विकास किया जाएगा। अररिया जिले के बसमतिया थाना क्षेत्र से एसएसबी के जवानों ने ब्राउन शुगर, नेपाली करेंसी और मोबाइल के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासन थाना क्षेत्र में एसएसबी के जवानों ने दो नेपाली युवकों के पास से 9,10,000 नेपाली रूपये बरामद किए हैं। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत कसियाडी गांव से पुलिस ने सीबीआई की टीम पर हमला करने के आरोप में रामोतार महतो को गिरफ्तार किया है। पटना में अवैध बालू खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सगुना मोड़ के पास से पुलिस ने बालू भरे 17 ओवरलोडेड ट्रक और 5 ट्रैक्टर को जब्त किया है। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव के पास पुलिस ने एक वाहन से 226 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विनेश फोगाट को ओवरवेट होने के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए फोगाट को चैंपियन में चैंपियन कहा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। बिहार की 2 रिक्त सीटों पर 3 सितंबर को होगा मतदान। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।